एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो शायद हम सभी के लिए कभी ना कभी बहुत काम की साबित होती है, कीथ रोलाक की व्हाट टू डू व्हेन यू आर न्यू।
हाँ, क्योंकि नया होना तो जिंदगी का हिस्सा है ना? मतलब नई नौकरी, नया शहर, कॉलेज का पहला दिन या किसी नए ग्रुप में शामिल होना, ये अनुभव तो हम सबके सामने आते हैं।
बिल्कुल। और अक्सर ये लगता है कि बस किसी तरह टिक जाएं या बस उम्मीद करते हैं कि लोग हमें अपना लेंगे।
सही कहा, लेकिन ये किताब कुछ और कहती है। ये कहती है कि हमें किस्मत के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है।
हाँ बिल्कुल। नई जगह पर घुलना मिलना, सफल होना, ये असल में एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। ये सिर्फ आत्मविश्वास होने या ना होने की बात नहीं है।
अच्छा।
बल्कि कुछ खास तरीकों और रणनीतियों को अपनाने की बात है।
तो ये तो बड़ी राहत की बात हुई, मतलब इसे सीखा जा सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं। कीथ रोलाक ये कौन है और क्यों इनकी बात सुनना जरूरी है?
देखिए, कीथ रोलाक बैब्सन कॉलेज में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और पहले वहां के जो FW ऑल इन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस है उसके डीन भी रह चुके हैं।
ओके।
और स्टैनफोर्ड से PhD हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो एकेडमिक तौर पर तो उनकी पकड़ काफी मजबूत है।
वो तो है, पर सिर्फ प्रोफेसर होना ही काफी नहीं होता, खासकर इस विषय पर। उनके नजरिए में कुछ खास है क्या?
हाँ बिल्कुल है। जो बात उन्हें अलग बनाती है वो है उनका 2 दशकों से ज्यादा का फोकस। उन्होंने खास तौर पर इसी चीज पर रिसर्च की है कि नए लोग किसी माहौल में कैसे ढलते हैं।
अच्छा।
हाँ, जिसे अकादमिक भाषा में न्यू कमर सोशलाइजेशन कहते हैं।
अच्छा।
मतलब नए लोगों के घुलने मिलने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उस पर।
ओके। तो ये सिर्फ उनके अपने अनुभव या मतलब सुनी सुनाई बातें नहीं है?
नहीं नहीं, यही तो खास बात है। उनकी जो सलाह है वो हजारों लोगों पर किए गए सर्वे, इंटरव्यूज और स्टडीज पर आधारित है।
अच्छा, हजारों लोग।
हाँ, तो इसमें अकादमिक रिसर्च की गहराई भी है और बिजनेस जगत की जो प्रैक्टिकल समझ होती है वो भी। ये दोनों का मेल उनकी बातों को काफी वजन देता है।
समझ गए। तो अब आते हैं किताब पर। इसका मूल मंत्र क्या है, मतलब क्या कहना चाहती है ये किताब आखिर?
जैसा हमने शुरू में कहा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि नई परिस्थितियों में कामयाब होना एक सीखा जा सकने वाला हुनर है। किताब उस डर, उस घबराहट, उस अनिश्चितता को सीधे संबोधित करती है जो हम सब महसूस करते हैं जब हम कहीं नए होते हैं।
हाँ, वो अजीब सा एहसास कि कहीं कुछ गलत ना कह दें या पता नहीं लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं, या वो इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली फीलिंग भी होती है कई बार कि शायद हम इस जगह के लायक ही नहीं है।
हाँ वही सब। किताब कहती है कि बस उम्मीद करते रहने से बेहतर है कि हम खुद कमान संभालें, एक एक्टिव सोची समझी रणनीति अपनाएं।
रणनीति मतलब कोई बहुत मुश्किल चीज?
नहीं नहीं, ये रणनीति बहुत जटिल नहीं है। इसमें शामिल है कि कैसे अपना परिचय असरदार तरीके से दें, कैसे लोगों के नाम याद रखें और सबसे दिलचस्प, कैसे सही ढंग से मदद मांगकर रिश्ते बनाएं।
एक मिनट, मदद मांगकर रिश्ते बनाना, ये तो थोड़ा उल्टा नहीं लगता? आमतौर पर तो लोग मदद मांगने से कतराते हैं, सोचते हैं कि कहीं कमजोर ना लगे।
सही कहा। यही तो किताब का एक सबसे दिलचस्प पहलू है जिस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कम जोखिम वाले कदम उठाकर हम नए माहौल में तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं, अच्छे रिश्ते कायम कर सकते हैं और वो जो डूबो या तैरो वाली स्थिति होती है ना, उससे बच सकते हैं।
यह हमें एक तरह से निष्क्रिय दर्शक से एक सक्रिय खिलाड़ी में बदल देती है।
सुनने में तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। चलिए फिर थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किताब किन मुख्य बातों पर जोर देती है? शुरुआत कहां से करें? शायद इस बात से कि आखिर नया होना इतना मुश्किल लगता क्यों है हमें? हाँ सही सवाल है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारा दिमाग ना वो ओवरलोड हो जाता है। नई जगह, नए चेहरे, नए नियम, क्या पहनना है, किससे क्या बात करनी है।
हाँ, बहुत कुछ सोचना पड़ता है।
बहुत कुछ, इतनी सारी अनिश्चितता होती है। ऊपर से ये दबाव भी कि हमें एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है। ये सब मिलकर दिमाग पर बोझ डालते हैं और एक तरह की तनाव प्रतिक्रिया, मतलब स्ट्रेस रिस्पॉन्स शुरू हो जाती है।
और इस तनाव में फिर लोग गलतियां कर बैठते हैं। कुछ तो एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे कोने में खड़े रहेंगे कि कोई आकर बात करे।
हाँ, और कुछ शायद ज्यादा ही कोशिश करने लगते हैं, हर बातचीत में कूद पड़ते हैं, जो शायद थोड़ा अजीब लग सकता है।
हाँ, और वो इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये लगना कि हम यहाँ फिट नहीं होते या हमारी पोल खुल जाएगी, ये भी बहुत आम है। किताब कुछ पुरानी सलाहों को भी चुनौती देती है।
जैसे?
जैसे लोग कहते हैं बस जैसे हो वैसे रहो, पर अगर आप अंदर से घबराए हुए हैं तो वैसे रहना कैसे मदद करेगा, ये सवाल वो उठाते हैं। हाँ, बात तो सही है। या ये कहना कि आत्मविश्वास सबसे जरूरी है, अब आत्मविश्वास कोई स्विच तो है नहीं कि ऑन कर लिया, अगर नहीं है तो क्या करें।
बिल्कुल, यहीं पर किताब का नजरिया काम आता है। वो कहती है कि आत्मविश्वास होने का इंतजार मत करो, जरूरी बदलाव है अपनी सोच में।
सोच में,
हाँ, निष्क्रिय इंतजार से हटकर सक्रिय रणनीति अपनाना। लेखक इसे न्यू कमर एंग्जाइटी कहते हैं, यानी नए होने से जुड़ी घबराहट, और बताते हैं कि इसे मैनेज किया जा सकता है, इसे काबू में लाया जा सकता है।
ठीक है, तो घबराहट को मैनेज करना है और सक्रिय होना है, पर सक्रिय होकर करना क्या है, वो कौन से बुनियादी कौशल हैं जिनकी बात किताब करती है?
देखिए, सबसे पहला और बुनियादी कौशल है अपना परिचय देना। हम अक्सर बस कह देते हैं, हाँ मेरा नाम अमित है। ये ठीक है, पर यादगार नहीं है, कोई क्यों आपसे आगे बात करना चाहेगा?
हाँ, ये तो है, 10 नए लोगों से मिलो तो शाम तक शायद 2 के भी नाम ठीक से याद ना रहे।
इसीलिए लेखक 5 सेकंड इंट्रोडक्शन का सुझाव देते हैं। ये सिर्फ नाम और पद नहीं है, इसमें 3 चीजें होनी चाहिए। आपका नाम, आपकी भूमिका, आप क्या करते हैं, और एक हुक।
हुक मतलब?
हुक मतलब कोई छोटी सी व्यक्तिगत जानकारी या सवाल पूछने का न्योता जिससे बातचीत आगे बढ़ सके।
कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका?
जरूर। मान लीजिए आप किसी नई कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर शामिल हुए हैं। आप कह सकते हैं, नमस्ते, मैं प्रिया हूं, यहां नई प्रोजेक्ट मैनेजर हूं फीनिक्स लॉन्च टीम में। मैं अभी दिल्ली से शिफ्ट हुई हूं और यहां आसपास कोई अच्छी रनिंग ट्रैक ढूंढ रही हूं।
अच्छा।
अब इससे सामने वाले को पता चलता है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, और बात करने के लिए एक टॉपिक भी मिल जाता है। शायद वो आपको रनिंग ट्रैक के बारे में बता सकें।
हाँ, ये तो वाकई ज्यादा दिलचस्प है, नॉर्मल हाई से तो बहुत बेहतर है। अच्छा, परिचय के बाद दूसरी मुश्किल आती है नाम याद रखने की। ये तो बहुत लोगों के लिए पहाड़ जैसा काम लगता है।
किसी का नाम याद रखना असल में इज्जत दिखाने का बहुत शक्तिशाली तरीका है।
तो इसके लिए क्या तरीका है?
इसके लिए लेखक एक तकनीक बताते हैं, मीट रिपीट सीमेंट।
मीट रिपीट सीमेंट, सुनने में तो आसान लग रहा है, क्या मतलब है इसका?
मीट, जब आप किसी से मिलें और वो अपना नाम बताए तो ध्यान से सुने, सच में ध्यान दें। रिपीट, बातचीत में फौरन उस नाम का इस्तेमाल करें, जैसे आपसे मिलके खुशी हुई नेहा।
अच्छा, तुरंत इस्तेमाल करें।
हाँ, या तो नेहा, आप इस प्रोजेक्ट पे कब से काम कर रही हैं। सीमेंट, बातचीत खत्म करते समय या बाद में फिर से नाम का इस्तेमाल करें, ठीक है नेहा, फिर मिलते हैं। और कोशिश करें कि नाम को उनके चेहरे, उनकी किसी बात या किसी और चीज से जोड़ लें,
कनेक्शन बनाना।
और अगर फिर भी भूल जाएं तो? कई बार ऐसा हो जाता है, कितना भी कोशिश करो तो ईमानदारी से दोबारा पूछ लेना बेहतर है। ये कहने में कोई शर्म नहीं कि माफ कीजिए, मैं नामों के मामले में थोड़ा कमजोर हूं, क्या आप अपना नाम दोहराएंगे? ये उस अजीब स्थिति से बेहतर है जहां आप उस व्यक्ति से नजरें चुराते फिरें क्योंकि आपको नाम याद नहीं आ रहा।
हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ओके, तो परिचय हो गया, नाम याद रखने की कोशिश भी कर ली। अब आते हैं उस बात पर जो आपने पहले कही थी और मुझे थोड़ी अटपटी लगी थी, मदद मांगना। ये कैसे कौशल हो सकता है, और वो भी रिश्ते बनाने वाला?
हाँ, ये किताब का शायद सबसे चौंकाने वाला लेकिन शक्तिशाली आइडिया है। हम नए लोग अक्सर मदद मांगने से डरते हैं, लगता है कि लोग सोचेंगे कि हमें कुछ आता नहीं है, हम नाकाबिल हैं।
बिल्कुल, खासकर काम की जगह पर तो ये डर और भी ज्यादा होता है कि भाई पहले ही दिन मदद मांगेंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा।
सही, लेकिन रोलाक का तर्क है कि सही ढंग से मांगी गई मदद असल में सामने वाले की तारीफ करने जैसा है।
तारीफ कैसे?
जब आप किसी से उनकी विशेषज्ञता या अनुभव पर सलाह मांगते हैं तो आप असल में उनके ज्ञान का सम्मान कर रहे होते हैं। ये दिखाता है कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं, और ये तुरंत एक रिश्ता बनाने की शुरुआत कर सकता है।
इस तरह से तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो किस तरह की मदद मांगनी चाहिए, कुछ भी पूछ ले?
नहीं नहीं, लेखक इसे हम्बल रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध कहते हैं। ये किसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए नहीं, बल्कि किसी छोटी मैनेजेबल चीज पर सलाह या राय मांगना है।
जैसे कि?
जैसे, मैं इस रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को लेकर थोड़ा उलझन में हूं, क्या आप 5 मिनट देखकर बता सकते हैं कि क्या ये ठीक लग रहा है? या आप इस कंपनी में काफी समय से हैं, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ मीटिंग्स में अपनी बात रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
अच्छा, मतलब ऐसी चीजें पूछना जो आसानी से गूगल पर ना मिले, बल्कि किसी के अनुभव या राय पर आधारित हो, जो पर्सनल इनसाइट दे सकें।
बिल्कुल, ये स्मार्ट सवाल हैं। ये दिखाते हैं कि आपने पहले खुद कोशिश की है, पर अब आपको विशेषज्ञ सलाह की जरूरत है। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि ये नए लोगों का सुपर पावर है, सवाल पूछने की इजाजत होना।
सुपर पावर, वाह।
हाँ, इसका इस्तेमाल करें, ये रिश्ते बनाने का सबसे तेज तरीका हो सकता है।
ये तो कमाल का नजरिया है, मदद मांगने को एक हथियार की तरह देखना। ठीक है, तो परिचय, नाम और मदद मांगने के अलावा और क्या जरूरी है नए माहौल में घुलने मिलने के लिए?
सक्रिय रूप से सामाजिक मेलजोल बढ़ाना, और खासकर वो अनौपचारिक समय जैसे कॉफी ब्रेक, लंच या ऑफिस के बाद की छोटी मोटी गैदरिंग।
हाँ, वो चाय कॉफी वाले ब्रेक।
हाँ, अक्सर नए लोग इन मौकों से बचते हैं, अपने डेस्क पर ही बैठे रहते हैं या अकेले निकल जाते हैं, लेकिन यही वो समय है जब असली रिश्ते बनते हैं और कंपनी कल्चर की अंदरूनी बातें पता चलती हैं।
पर कई लोगों के लिए, खासकर जो थोड़े शर्मीले हों, उनके लिए किसी ग्रुप में जाकर बातचीत शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, समझ नहीं आता क्या कहें।
हाँ बिल्कुल होता है, इसीलिए किताब एक सोशल गेम प्लान बनाने का सुझाव देती है। ये कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है, बस एक छोटा सा लक्ष्य तय करें।
कैसा लक्ष्य?
जैसे आज मैं लंच पर किसी एक नए सहकर्मी से बात करूंगी, या कॉफी ब्रेक में जाकर देखूंगी कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। आप पहले से कुछ वाक्य सोचकर रख सकते हैं, जैसे क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, या आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं।
मतलब थोड़ी तैयारी के साथ जाना।
हाँ।
अच्छा, और अगर किसी से अलग से मिलने का प्लान करें, जैसे कॉफी पर,
तो उसका मकसद साफ रखें। जैसे किसी सीनियर से मिल रहे हैं तो कहें, मैं समझना चाहती हूं कि आपकी टीम हमारे डिपार्टमेंट के साथ कैसे काम करती है, और इस बारे में आपकी सलाह लेना चाहूंगी। 15-20 मिनट की बातचीत काफी होती है। इससे आपका एक न्यूकमर नेटवर्क बनना शुरू होता है, यानी जानकारी और समर्थन का एक जाल।
ही नेटवर्क बनाना मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है, राइट? मतलब असली कनेक्शन बनाना है ना?
हाँ बिल्कुल, ये कोई लेन देन वाली नेटवर्किंग नहीं है, असली कनेक्शन बनाने हैं। और अलग अलग तरह के लोग होने चाहिए इस नेटवर्क में, आपके लेवल के सहकर्मी, पियर्स, आपसे अनुभवी लोग, मेंटोर्स और आपके मैनेजर। और यहाँ भी वही पहले वाले कौशल काम आते हैं, अच्छा परिचय, नाम याद रखना और सही सवाल पूछना या मदद मांगना, ये सब मिलकर आपका नेटवर्क बनाते हैं।
ठीक है, तो हमने सीखा कि कैसे परिचय दें, नाम याद रखें, मदद मांगें और नेटवर्क बनाएं। इसके बाद क्या आता है? मतलब घुल मिल तो गए, अब अपनी जगह पक्की कैसे करें?
इसके बाद आता है अपनी काबिलियत दिखाना और टीम के लिए वैल्यू ऐड करना। लेकिन यहाँ भी थोड़ी सावधानी जरूरी है।
सावधानी? किस तरह की?
ऐसा ना लगे कि आप बस दिखावा कर रहे हैं या दूसरों से ज्यादा जानते हैं। मतलब आते ही बहुत ज्यादा ओवर प्रॉमिस या ओवर कमिट ना करें।
हाँ, वो तो गलत इम्प्रेशन देगा। तो इसका सही तरीका क्या है?
लेखक छोटी जीतें, स्मॉल विंस की रणनीति सुझाते हैं। यानी आते ही कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ना करें।
ओके।
बल्कि जो काम आपको सौंपे गए हैं उन्हें अच्छी तरह से करें, उनमें अपना हुनर दिखाएं। इससे धीरे धीरे भरोसा बनता है, आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है।
और ये समझना भी जरूरी होगा कि टीम के लक्ष्य क्या हैं और आपका काम उनसे कैसे जुड़ता है ना?
हाँ बिल्कुल, सुनना और निरीक्षण करना, लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग, इस स्टेज पर भी बहुत बहुत जरूरी है। समझें कि टीम कैसे काम करती है, फैसले कैसे लिए जाते हैं, यहाँ सफलता किसे माना जाता है, फिर अपने काम को उन लक्ष्यों के साथ अलाइन करें। लेखक इसे अर्जित समावेश कहते हैं, यानी आपने मेहनत करके अपनी जगह बनाई है, अब आप सिर्फ जानकारी लेने वाले नहीं हैं बल्कि टीम में योगदान देने वाले बन रहे हैं।
वाह, तो ये पूरी एक यात्रा है, मतलब घबराहट को समझने से लेकर सक्रिय रणनीति अपनाने, बुनियादी कौशल सीखने, नेटवर्क बनाने और फिर धीरे धीरे अपनी जगह कमाने तक। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो किताब के मुख्य संदेश क्या निकल कर आते हैं?
मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बातें हैं जो बार बार सामने आती हैं। पहला, निष्क्रियता पर सक्रियता। इंतजार मत करो कि लोग तुम्हें अपनाएंगे, खुद पहल करो, अपने घुलने मिलने की जिम्मेदारी लो।
टेक चार्ज।
दूसरा ये कि नया होना एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, ये कोई किस्मत या पर्सनालिटी की बात नहीं है। ये जानना, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो शायद थोड़े अंतर्मुखी हैं, बहुत हिम्मत देता है ना?
बिल्कुल।
तीसरा, मदद मांगने की अप्रत्याशित ताकत। ये कमजोरी नहीं बल्कि होशियारी और रिश्ते बनाने का जरिया है अगर सही लंजे किया जाए।
हाँ, वो हम्बल रिक्वेस्ट वाला पॉइंट।
चौथा, रणनीतिक रूप से जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। किसी भी नई जगह के जो अलिखित नियम होते हैं, जो कल्चर होता है, उसे समझना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
सही कहा।
और पांचवा, छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशें बड़ा असर डालती हैं। रोज किसी का नाम याद रखना, एक अच्छा सवाल पूछना, किसी की मदद करना, ये सब मिलकर संचयी प्रभाव डालते हैं और आपको उस नए माहौल का हिस्सा बनाते हैं।
ये सारी बातें हमारे देश में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी लागू होती हैं। चाहे कोई नई नौकरी ज्वाइन करे, किसी दूसरे शहर पढ़ने या काम करने जाए, या शादी होके नए घर में जाए,
हाँ, या किसी मोहल्ले की समिति का सदस्य बने।
बिल्कुल, हर जगह ये सिद्धांत काम आ सकते हैं। सक्रिय होना, सवाल पूछने से न डरना, छोटे कदम उठाना।
हाँ, और किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं, सीधे कोट ना भी हो पर उनके पीछे का विचार बहुत दमदार है।
जैसे वो पहली बात आपने कही थी, लोगों के आपका स्वागत करने का इंतजार मत करो, अपने घुलने मिलने की जिम्मेदारी लो। ये कितना सीधा एक्शन लेने को कहता है।
हाँ, ये सिर्फ पसंद किए जाने के बारे में नहीं है बल्कि सीखने और जुड़ने के बारे में है।
और मदद मांगने वाली बात, मदद का अनुरोध आपके सबसे असरदार रिश्ते बनाने वाले औजारों में से एक है। ये दूसरे की विशेषज्ञता का सम्मान है और एक अजनबी को फौरन एक संभावित सहयोगी बना देता है। ये उस डर को सीधा चुनौती देता है।
बिल्कुल, और परिचय वाली बात भी, आपका परिचय आपका पर्सनल बिलबोर्ड है। सिर्फ हाय मैं रवि कहना एक खाली होर्डिंग जैसा है। 5 सेकंड का परिचय जिसमें नाम, रोल और एक पर्सनल हुक हो, लोगों को आपको याद रखने और आपसे बात करने की वजह देता है।
कितना प्रैक्टिकल सुझाव है।
और वो अलिखित नियमों वाली बात, किसी संगठन के अलिखित नियम अक्सर लिखित नियमों से ज्यादा जरूरी होते हैं। एक नए व्यक्ति के तौर पर आपका पहला काम एक जासूस या कह लें मानव विज्ञानी जैसा है। बदलने की कोशिश करने से पहले ध्यान से देखो, सवाल पूछो और संस्कृति को समझो।
हाँ, ऑब्जर्व करो पहले। ये सारे विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं और शायद हमारे पुराने तरीकों पर सवाल भी उठाते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब अच्छी बातों को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? कुछ टिप्स?
हाँ, इसके लिए बहुत ठोस तरीके अपनाए जा सकते हैं। मान लीजिए नई नौकरी लगी है, पहले हफ्ते का लक्ष्य बना लें, रोज कम से कम 2 लोगों से अपना 5 सेकंड इंट्रोडक्शन इस्तेमाल करके मिले।
ओके।
और 3 लोगों के साथ 15 मिनट की कॉफी चैट शेड्यूल करें, जिसमें वो विनम्र अनुरोध वाली तकनीक इस्तेमाल करें, मैं नया हूँ और समझना चाहता हूँ कि।
अच्छा।
और अगर नई प्रोजेक्ट टीम में आए हैं
तो मीटिंग से पहले थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं। टीम के सदस्यों की लिंक्डइन प्रोफाइल देख लें अगर संभव हो, कुछ अच्छे सोचे समझे सवाल तैयार रखें और प्रोजेक्ट में जल्दी ही कोई छोटी जीत हासिल करने का मौका तलाशें, कोई छोटा सा काम जिसे आप बखूबी कर सकें।
नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने वाले लोगों के लिए क्या सलाह है? वो अक्सर बड़े डरावने लगते हैं।
हाँ, लगते हैं, तो वहाँ बिना लक्ष्य के घूमने से अच्छा है एक छोटा सा लक्ष्य रखें। जैसे मैं आज 3 नए लोगों से सार्थक बातचीत करूंगी। अपना 5 सेकंड इंट्रोडक्शन तैयार रखें और सिर्फ अपना कार्ड देने के बजाय सामने वाले की बात ध्यान से सुने।
सही। और अगर कोई नए शहर में शिफ्ट हुआ है या किसी नए सोशल ग्रुप से जुड़ना चाहता है, वही सिद्धांत, अपना तैयार परिचय इस्तेमाल करें, लोगों से सलाह मांगे, यहाँ आसपास सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है या वीकेंड पर घूमने के लिए कौन सी जगहें अच्छी हैं, ये भी विनम्र अनुरोध का ही रूप है।
हाँ, ये तो है।
और सक्रिय रूप से क्लब, ग्रुप या गतिविधियों में हिस्सा लें जहाँ आपकी रुचि हो।
तो मूल बात ये है कि डर कर या हिचकिचाकर किनारे खड़े रहने के बजाय इसे एक चुनौती की तरह देखें जिसके लिए आपके पास एक प्लान और कुछ टूल्स हैं। ये चिंता को एक तरह से मकसद में बदल देता है।
बिल्कुल, मेरे लिए तो इस किताब से सबसे बड़ी सीख यही रही कि नया होना वाकई एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। ये जानना कि मैं तैयारी कर सकता हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ, ये बहुत राहत और आत्मविश्वास देता है।
हाँ, ये एम्पावरिंग है।
और ये सिर्फ पहली नौकरी के लिए नहीं, जिंदगी में हर नए मोड़ पर काम आने वाली बात है।
और मुझे सबसे ज्यादा वो विनम्र अनुरोध वाली बात ने प्रभावित किया। ये सोचना कि मदद मांगना, जो अक्सर कमजोरी समझी जाती है, असल में रिश्ते बनाने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है।
ये वाकई तनाव कम करने और प्रैक्टिकल समाधान देने वाली किताब है।
हाँ, और ये ऐसे कौशल है जो जिंदगी भर साथ देते हैं, क्योंकि बदलाव तो जीवन का नियम है और हम सब बार बार नए होते रहेंगे।
बिल्कुल, और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर व्यक्ति सीख सकते हैं कि नए माहौल में कैसे सफल हुआ जाए, तो फिर कंपनियां और संगठन इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वो अपनी ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं को, यानी नए कर्मचारियों को कंपनी में शामिल करने के तरीकों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि नए लोग जल्दी से सहज महसूस करें, जुड़ें और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें, इस पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।